और इसी के साथ फिर हम सूरत आले इमरान को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा है और सबका निगेबान है, जिसने आप पर हक के साथ किताब को नाजिल फरमाया, जो आपने से पहले की तस्दीक करने वाली है। इसी ने इससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी इसी ने उतारा। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह ताला गालिब है और बदला लेने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला पर आसमान और जमीन की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की बनाना चाहता है बनाता है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गालिब और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 1 से 6, 1 to 6। इसका उनवान है अल्लाह ताला का तारुफ उसी की जुबान से। सूरत आले इमरान असल में सूरत बकरा ही का एक पेयर है। सूरत बकरा में हमने यहूद के किस्से पढ़े। ये वो लोग थे जिन्होंने नबियों से दुश्मनी रखी, उनसे बुगज रखा और उनको कत्ल तक कर दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह के गजब के शिकार हुए। सूरत आले इमरान में नसारा यानी क्रिश्चियंस का जिक्र होगा कि जिन्होंने नबियों से मोहब्बत में इतना गलूब किया कि उन्होंने नबियों के रुतबे को बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में गुमराह हो गए। इस सूरत में दुआएं बहुत सी आएंगी। और दूसरी बात है कि इसमें कोई हुक्म नहीं है। सूरह बकरा में हमने बहुत हुक्म देखे थे, शरीयत देखी थी, तो इनके अंदर वो नहीं है। सूरत का आगाज भी अलिफ लाम मीम से है, गोया के बेबस किया जा रहा है। अकल कहती है कि इसको क्यों पढ़ो, जिसका मानी भी समझ नहीं आता, लेकिन हम अकल के पुजारी नहीं, हम वही के पुजारी हैं। हमें अल्लाह के नबी की इस बात पर यकीन है कि इसके एक एक लफ्ज के ऊपर दस दस नेकियां मिलती हैं, तो लिहाजा हम वही नेकियां करने के लिए अलिफ लाम मीम को पढ़ते हैं। और इन आयतों में अल्लाह ताला की कुछ ऐसी सिफात का तस्करा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं थी। नजरा से ईसाई वफद आया था, जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाई का दावा किया हुआ था, उन्हीं को बेबस करने के लिए ये आयतें बयान की गईं कि क्या वाकई तुम जो ईसा को खुदा कहते हो तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। इस हिस्से में एक चीज जिसपे इंशाल्लाह हम गौर करेंगे बाद में, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा। अल्लाह की जात जो बच्चे की तस्वीरें माँ के पेट में बनाती है। किसी भी खूबसूरत बच्चे को अगर आपने देखा हो तो उसको देख के जरा सोचिए कि ये कहाँ बना है। अंधेरे में कोई रोशनी भी नहीं, फिर उसमें कोई मॉडल भी सामने नहीं। माँ को खुद नहीं पता अंदर कैसी तस्वीर बन रही है, कि वाकई देख के यकीन आ जाता है कि अल्लाह ही की जात है जो ऐसे प्यारी शक्लों और सूरतों को बनाने वाली है। अल्लाह ताला हमें अपनी मार्फत दे दे और हम उसके एक एक फैसले पे राजी हो जाएं। हमारी जैसी शक्लें उसने हमें दी, हम उसी पे राजी हो जाएं और जैसा वो है हम उसको वैसा ही मान जाएं। हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात। वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी, जिसमें वाजे मजबूत आयते हैं जो असल किताब है। बाज़ मुतशाबे आयते हैं, बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की तलब और इनकी मुराद की जस्तजू के लिए। हालांकि इनके हकीकी मुराद को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद लोग ही हासिल करते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउ النَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ। ए हमारे रब, यकीनन तू लोगों को उस दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं, यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। ये थी आयत नंबर 7 से 9, 7 to 9। इसका उनवान है अकल की फिसलन से बचो। कुरान पाक में दो किस्म के मजामीन हैं। एक वो जिनका इस दुनिया की जिंदगी से ताल्लुक है, मसलन तारीख के वाक़यात, कायनात की निशानियाँ, जिंदगी गुजारने के तरीके, अहकामात। इसी तरह दूसरे वो मजामीन है जिसका गैब से ताल्लुक है, हमारे मरने के बाद की बातों से उसका ताल्लुक है, मसलन अल्लाह ताला की सिफात, जन्नत जहन्नम। अब इंसान का काम क्या है कि दो आयतें यहाँ के हुक्म की हैं जिनका ताल्लुक इस दुनिया की जिंदगी से, उन पर तो गौर करे, अहकामात पूछे, नमाज के पूछे, जक़ात के पूछे, ताल्लुकात कैसे अच्छे बनते हैं उसको पूछे, और जो रह गई बातें कल की दुनिया की उसको बस ऐसे ही मान ले। कल जाएंगे तो देख लेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो लोग जो अमल नहीं करना चाहते ना, वो हुक्म वाली आयतों को तो छोड़ देते हैं और करने क्या लगते हैं, वो आयतों पे बात बहस करने लगते हैं जिसको आज हम नहीं जानते। मसलन अल्लाह ताला का हाथ कैसा है, जन्नत कैसी होगी, अच्छा अगर जन्नत है तो हमें दिखती क्यों नहीं। तो यहाँ मुहकमात और मुतशाबे आयतों की बात की गई। हमारा अमल क्या है कि अकल को फिसलने से बचाएं। मत सोचिए कि यहाँ आके कुरान पढ़ते वक्त हम महफूज हो गए। कुरान पढ़ने वाला तो ज्यादा खतरे में होता है। अकल इधर फिसलती है ना तो कुरान के ऊपर ये तराजात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप रास्तों से फिसलते हैं ना, इस तरह अकल भी फिसलती है। और वो लोग जो बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा तसव्वुर करते हैं, वो ज्यादा फिसलते हैं। हमारे लिए अमल की बात इसमें यही है कि अपने आप को फिसलाने की बजाय जो अल्लाह ने कह दिया उसको मान लें और दुआएं मांगते जाए कि अल्लाह हिदायत के बाद गुमराह ना करना। इसलिए कि कोई महफूज नहीं जब तक जन्नत तक ना पहुंच जाए। कोई कुरान पढ़ने आ जाए, अल्लाह की रहमत के दरवाजे के खुलने की बात है, लेकिन दरवाजा खुलने से ही सिर्फ मंजिल नहीं मिलती। जब तक कि आप आखिरी वक्त तक वहां बैठ न जाएं, अल्लाह ताला हमें मरते दम तक दीन के साथ रखे और सही समझ पे रखे। और जो कुरान हम पढ़ और पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि हम खुद भी फिसले और दूसरों को भी फिसलाएं। इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुग़निया अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया। काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह ताला के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम न आएंगी। ये तो जहन्नुम का ईंधन है, जैसा आले फिरौन का हाल हुआ और जो इनसे पहले थे। उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। काफिरों से कह दीजिए कि तुम अन करीब मखलूब किए जाओगे, जहन्नुम की तरफ जमा किए जाओगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन दो जमातों में जो आपस में गुथ गईं। एक जमात अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह काफिरों का था। वो इन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देखते थे और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है। यकीनन इसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। आयत नंबर 10 से 13, 10 to 13, इनका उनवान है गैर मामूली मदद मामूली हालात में नहीं आती। इन आयात में अल्लाह ताला ने गज़वे बदर को सामने रखते हुए अपना वो कुलिया बता दिया कि अल्लाह की मदद उस गिरोह पे आती है जो उसको डिजर्व करते हैं। 313 के मुकाबले में जब 1,000 थे, लेकिन उन 313 में से हर एक का ईमान 10-10, 20-20 लोगों के ईमान के बराबर था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और मदद हासिल हो गई, और इस तरह मुसलमान जो थे वो एक ऐसी फतह हासिल करके आए कि जिसकी वजह से मुसलमानों की धाक बैठ गई। जब कभी भी दीन की बात उठती है तो लोगों को वो एक नई बात लगती है। वो लोग जिन्होंने पहले ये बात नहीं सुनी होती, वो बेचैन होने लगते हैं कि ये क्या हो गया और कैसा हुआ। और जो ही उस दावत की तरफ लोग आते हैं तो अमूमन उसकी कीमत क्या होती है कि अपने माहौल से कटा जाए, अपने खानदान, अपने दोस्तों और अपने एक लाइफस्टाइल से कट के एक दूसरे लाइफस्टाइल की तरफ आना आया जाए। कुछ लोग चूंकि आगे देख रहे होते हैं वो इसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो दुनिया की चीजों में उलझे रहते हैं फिर वो ऐसी चीजों से दूर रहते हैं। वो क्या चीजें हैं जो हक को सामने देखकर भी कबूल करने की दावत नहीं देती, उसका तज़किरा अगली आयत में है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा। मरगूब चीजों की मोहब्बत लोगों के लिए मुजयन कर दी गई, जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशानी लगे हुए घोड़े और चौपाए और खेती। ये दुनिया की जिंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न बताऊं? तकवा वालों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां और अल्लाह ताला की रजामंदी है। सब बंदे अल्लाह की निगाह में हैं। कौन से बंदे? अल्लज़ीन यकूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। जो कहते हैं ऐ हमारे रब, हम ईमान ला चुके हैं, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें आग के अजाब से बचा। जो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले और फरमा बरदारी करने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 14 से 17, 14 to 17। इनका उनवान है हुब्बे दुनिया यानी दुनिया की मोहब्बत आखरत के तकाजों से गाफिल करने वाली सबसे बड़ी चीज़। अल्लाह ताला ने नाम ले ले के बता दिए कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ से लोग मोहब्बत करते हैं, हालांकि आखरत जो है वो सामने है। अब देखिए कि ये दुनिया एक इम्तिहान के लिए पैदा की गई। अल्लाह ताला ने यहाँ कुछ चीज़ों में कशिश रखी है और ख़ुद ही बता दिया कि कशिश रखी है। क्यों रखी है? दिल में एक सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की चीज़ों के लिए मोहब्बत क्यों रखी है? ये माल, ये बेटे, ये बीवियाँ, ये घर, ये गाड़ियाँ, ये छुपाए खेतियां। तब देखिए पहली तो बात है कि हुसन के लिए, अगर इन चीजों में मोहब्बत ना होती तो दुनिया का क्या हुसन होता। एक औरत को अगर अपने घर से मोहब्बत ना होती तो बताए क्या वो अपने घर को साफ रखती, कतन ना रखती। इसी तरह अगर शौहर के दिल में बीवी बच्चों की मोहब्बत ना होती तो क्या वो मेहनत करता, नहीं करता। दुनिया का निजाम चलाने के लिए ये मोहब्बत रखनी थी। दूसरी वजह ये कि इसको आजमाइश के लिए रखा। आजमाइश क्या है कि अब इनसे मोहब्बत है ना, फिर जब हम इन चीजों को अल्लाह के लिए छोड़ते हैं ना, फिर दिल पे चोट पड़ती है, फिर इंसान का दिल घुटता है और उस चोट के पड़ने का ही अजर है। अगर आप देखिए दिल पे चोट ही ना पड़े तो माल देने का क्या गम है, आपके पास ढेर पड़ा है पकड़ के दे दे, मोहब्बत ही नहीं, पकड़ो पकड़ो फेंक दो। जैसे ट्रैश से कोई मोहब्बत नहीं होती ना, तो आप घर से ट्रैश निकालते हैं तो आपको कोई गम होता है, नहीं होता ना। लेकिन आपको माल से मोहब्बत होती है तो आप एक नोट भी निकाल के किसी को देंगे तो आप सोचेंगे कि ये मैंने क्यों दिया, और वहां देना जहां से कुछ जाहिर दुनिया में मिल ही नहीं रहा। सारा दिन हमारी जेबों से नोट निकलते हैं और हम खर्च करते हैं, बुरा क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके रिटर्न में कुछ मिल रहा है। कहीं सब्जी ला रहे हैं, कहीं खाना ला रहे हैं, कहीं कपड़े ला रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में जब निकल के वो जाता है किसी ऐसी जगह में कि जहां से सदका जारिया बनना हो, तो हाथ क्यों घुटता है, क्योंकि उसका रिटर्न नहीं दिखता। तो ये आजमाइश के लिए अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। फिर तीसरी चीज देखिए कि इन चीजों को अल्लाह तआला ने हमारे खूबसूरत जो किया ना, तो असल में ये जन्नत में मिलने वाली नेमतों का तारुफ है। दुनिया में बता दी ऐसी होती है मोहब्बत, ये मोहब्बत होगी तुम्हें बीवी से, ये मोहब्बत होगी वहां तुम्हें कपड़ों से, ये मोहब्बत होगी तुम्हें। आज दुनिया में तो वो है ही नहीं जो वहां अल्लाह ने तैयार करके रखा है। तो अल्लाह ताला कहता है जो यहां से उठ के आगे के लिए सोचेगा, फिर उसको ये चीजें उसके पाओं की रुकावट नहीं बनेंगी। और जितना आप अल्लाह के रास्ते की रुकावटों को हटाते जाएंगे ना, आपका दिल खुलता जाएगा। आपको चोट पड़ेगी ना, फिर आप रो के कहेंगे अल्लाह ये तेरे लिए, अल्लाह ये कुर्बानी तेरे लिए, अल्लाह ये जुदाई तेरे लिए, अल्लाह ये मेरा अपने आप को बांध के रखना तेरे लिए। फिर आपकी एक एक थकन, एक एक करवट जो आपको इस वक्त महसूस हो रही होगी, आप चुपके से कहेंगे अल्लाह ये तेरे लिए, अल्लाह ये सुनना तेरे लिए, ये बोलना तेरे लिए, फिर इंसान का दिल खुलता है। और अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो याद रखिए कि फिर कुछ नहीं मिलेगा। आखिरत सामने होती है तो कुर्बानी देना आसान हो जाता है, बल्कि फिर इंसान तो लेके फिरता है उस शख्स की तरह कि जिसको ये होता है कि कोई मेरी इस नेमत को कबूल तो कर ले। ये दुनिया दुनिया में रही तो खत्म हो जाएगी। ये नेमतें, ये स्किल्स, ये सलाहियतें अगर आगे जाएंगी, अगर सदका जारिया बन जाएंगी, तो हमारे बाद भी हमारे लिए काम आएगा। और अल्लाह हमें इन नेमतों की कदर वाला भी बना दे। आज भी कितने लोग हैं जो इस कदर से गाफिल हैं, जिनको नहीं पता कि ये अल्लाह के दीन की दौलत बट रही है जिसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन कितने लोग हैं जिनको नींद प्यारी है, कितने लोग हैं जिनको घर प्यारे हैं। और सबसे बड़ा बुत तो हमारा हमारी जहालत है। अल्लाह ताला उसको दूर कर दे और हमें इस दीन की कदर आ जाए, जिसका जिक्र आप अगली आयतों में देखेंगे। शहीद अल्लाह, अल्लाह फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो अदल को कायम रखने वाला, इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम है, और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की वजह से ही इख्तलाफ किया। और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफर करे, अल्लाह ताला इसका जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये आपसे झगड़े तो आप कह दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह ताला के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया। और अहले किताब से और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी अतात करते हो, बस अगर ये भी ताबेदार बन जाएं तो यकीनन हिदायत वाले हैं, और अगर ये रूगरदानी करें तो आप पर सिर्फ पहुँचा देना है, और अल्लाह ताला बंदों को खूब देखभाल रहा है। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल व इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ऐ नबी इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। इनके अमाल दुनिया और आखरत में गारत हैं और इनका कोई मददगार नहीं। ये थी आयत नंबर 18 से 22। इनका उन्वान है कायनात की गवाही अल्लाह के हक में। इतनी खूबसूरत आयत है ना कि कभी आप इसको जब तफसील से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह के दीन की गवाही होती क्या है। अल्लाह ने इल्म वालों का नाम फरिश्तों के साथ और अपने नाम के साथ लिया कि अल्लाह की जात और अल्लाह की मार्फत तो सिर्फ इन्हीं को पता है कि जो वाकई अपने आप को अल्लाह की किताब से जुड़े होते हैं। हमारे लिए इस हिस्से में से सीखने की बात यही है कि अपने आप को अल्लाह के आगे झुका देना है। जिस तरह ये कायनात अल्लाह के आगे झुकी हुई है, हमने भी अल्लाह के आगे झुक जाना है, और अपने दिलों के तासुब, कीने, बुग़्ज़ और हसद को निकाल के हमने अल्लाह के दीन के लिए जुड़ने का इरादा कर लेना है। मुझे तो ऐसे लगता है हर आयत हम इस बात का तकाजा कर रही है कि हम अपने आप को जरूर इस चीज के लिए पेश करें कि अल्लाह अब हमने अपनी बाकी जिंदगियां तेरे दीन की गवाहियां देते हुए और शहादत हक की गवाहियां देते हुए दुनिया से जाना है, ताकि कल तू हमें शहादत की मौत नसीब करे। दुनिया में जब आप जिंदगी में शहादत की गवाही देते हैं ना, तो फिर मौत भी शहादत की मिलती है। अगर हमारी जिंदगी गफलत की है ना, तो आप मैदान जंग में भी इत्तफाक से जाके मर जाएंगे तो वहां भी आपको शहादत नहीं मिलेगी। अल्लाह बंदे के दिल को देखता है, जिसको तड़प होती है अल्लाह उसकी तड़प को फिर कबूल भी कर लेता है। अलम तारा इल्लसीना उतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया है? वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात इनकी मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह इनका ये कहना है कि हमें तो गिने चुने दिन ही आग जलाएगी। इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। बस क्या होगा जब हम इन्हें जमा करेंगे, बस क्या हाल होगा जबकि हम इन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स अपना अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और इस पर जुल्म न किया जाएगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंजिल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आप कह दीजिए अल्लाह आप तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान को जानदार से पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान को पैदा करता है। तू ही जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। ये थी आयत नंबर 23 से 27, 23 से 27। इनका उनवान है इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत देता है, और अल्लाह की हिदायत लोगों को समझ क्यों नहीं आती? इसलिए कि अल्लाह की जात की मार्फत नहीं है। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी वो सिफात पेश कर दी कि जिसको अल्लाह ताला की इन सिफात का यकीन आ जाए तो वो मखलूक से बेनियाज हो जाएगा। वो गैरों के दर की तरफ देखने की बजाय अपने मालिक को देखेगा। इन आयात के बारे में रिवायत है, हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ऊपर कर्ज की शिकायत की, तो आपने फरमाया तुम आयत कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क पढ़कर ये दुआ करो। क्या दुआ है? रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीम हुमा तुती मन तशाओ मिन हुमा व तमनाओ मन तशाओ इरहमनी रहमतन तुगनिनी बिहा अन रहमति मन सिवा अल्लाहुम अग्निनी मिन अल फक्र वक्दी अन्नी अन्निद्दैन। कहा कि तुम्हारे ऊपर अगर ओहद पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह ताला इसकी अदायगी का इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, पीछे कर्जों की बात हुई और यहाँ कर्ज की अदायगी की बात हो गई। अल्लाह ताला हमें ये दुआएं पढ़ने वाला बना दे। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। मोमिनों के चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं मगर ये कि इसके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो। अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। कह दीजिए ख्वाह तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ ख्वाह तुम जाहिर करो, अल्लाह ताला बहरहाल जानता है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसे मालूम है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को और अपनी की हुई बुराई को मौजूद पा लेगा, आरजू करेगा कि काश इसके और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है। अल्लाह अकबर, दो दफ़ा ये आयत आ रही है यहाँ। युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा रहम दिल है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। कुल अतीउल्लाह वर रसूल। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। ये थी आयत नंबर 28 से 32। इसका उनवान यही लिखेंगे आप, अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है। अगर इस हिस्से को पढ़ते हुए अगर हम अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस करें तो फौरन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपना डर दे दे। اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نان مسلم کے ساتھ تعلقات کی بات کی. انشاءاللہ آگے یہ موضوع آئے گا تو میں آپ کو چار قسمیں لکھاؤں گی کہ نان مسلمز کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے اور اس کے کیا درجے ہیں. لیکن یہاں اللہ کے نبی کی محبت کی بات ہے. اتباع رسول ہی وہ چیز ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں سے محبت دے دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. اس حصے میں ایک چیز آپ اپنے قرآن مجید میں ہائی لائٹ کریں گے. جی آیت نمبر 30 ہے یہ, تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدہ. اس حصے کو ہائی لائٹ کیجئے. اصل میں یہاں قیامت کے دن کا منظر ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں دوری ڈل جائے. دنیا میں ہم اپنے گناہوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں. ہمیں اپنے گناہ بڑے عزیز ہوتے ہیں, بڑی محبت سے لوگوں کو اپنے گناہ دکھاتے بھی ہیں. ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو نماز کے دوران پڑھنے کی ہے, ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعت بین المشرق والمغرب. اس سے آگے اس حصے پہ اپنے غور کرنا ہے. جب آپ انشاءاللہ اس حصے کی تفسیر اپنے قرآن مجید آسن البیان میں سے پڑھیں گے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ دنیا میں میں اپنے گناہوں کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتی ہوں لیکن قیامت کے دن میں ان کو اپنے سے دور کرنا چاہوں گی, تو کیوں نہ میں اس کو دنیا میں ہی اپنے سے دور کر دوں. اس کے بعد آگے اب سورت آل عمران کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. ان اللہ ہستفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب, میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اسے تیرے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی, تو میری طرف سے قبول فرما, یقیناً تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد پیدا ہوئی اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں. میں نے اس کا نام مریم رکھا. میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح سے قبول مالی اور اسے بہترین پرورش دی. اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے, ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے, وہ پوچھتے اے مریم, یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے, بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے دے. اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار, مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعاء. بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا, سردار, نفس پہ ضبط کرنے والا اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے. کہنے لگے اے میرے رب, میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے, تو مانگا کیوں؟ ہے نا انسان کی عادت, مانگتا ہے پھر ملنے لگے تو کہتا ہے یہ ہوا کیسے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. کہنے لگے پروردگار, میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا, صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم, اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پسند کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر دیا, اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں اور تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا, اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا. یہ تھی آیت نمبر 33 سے 44, 33 سے 44. ان کا عنوان ہے چنا ہوا گھرانہ. اس میں ہم نے حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا ذکر سنا. یہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ تھے, اور کتنی چنی ہوئی فیملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خالو کو بھی چنا, بھانجی کو بھی چنا, پھر بیٹے کو بھی چنا, پھر خالو کے بیٹے کو بھی چنا. اور یہی ہے وہ خاندان جس کے نام پہ سورت کا نام سورت آل عمران ہے. یہ چنے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کب چنا جاتا ہے؟ کوئی تب چنا جاتا ہے جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کہانیوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے.